ओम शांति। ये समय दोपहर का समय है, थोड़ा सा भारी समय होता है ना, नींद आती है, सुबह से हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, फिर सुबह से ही हम ज्ञान योग करते करते बैठ बैठ के थोड़ा थक भी जाते हैं ना। तो आप में से किसी को नींद तो नहीं आ रही है? नींद किसी को आ रही है तो हाथ खड़ा करें। जिसको नींद आ रही, शायद बाहर चक्कर लगाने चले गए हैं। तो इसीलिए ये जो समय है, थोड़ा भारी समय होता है, तो इसलिए लक्ष्य रखा जाता है कि जब आपकी दिनचर्या सेट की जाए तो इस समय हम कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी रखते हैं जिसमें आपको नींद भी ना आए, आपको इंटरटेनिंग भी हो, आपका ज्ञान वर्धन भी हो। तो इस समय रोज आप कोई ना कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं। पिछले दो दिनों में आपने दो एक्टिविटी की है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आज भी हम ज्ञान के ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे, चिंतन से आत्मा की चमक बढ़ती है। चिंतन, चाहे वो ज्ञान का चिंतन हो या आत्मचिंतन हो, चिंतन से आत्मा की चमक बढ़ती है, चिंतन से हमारी समझ बढ़ती है। ज्ञान तब तक हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, जब तक उसका चिंतन ना किया जाए। हमारे चार मुख्य विषय हैं, जिसमें पहला विषय ज्ञान है, योग दूसरा है। हालांकि योग से ही हमारे अंदर आत्म परिवर्तन आता है, परंतु फिर भी बाबा ने ज्ञान को पहला विषय रखा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही योग की भी समझ देता है। ज्ञान जो है वही हमें जीवन जीने की समझ देता है। जीवन में जब उतार चढ़ाव आता है तो कैसे उससे निपटना है, तो हर बात की समझ ज्ञान देता है। ज्ञान इंसान के जीवन को सहज बनाता है, जीवन से संघर्ष को कम करता है, उनकी मुश्किलों को कम करता है। परंतु ज्ञान ये सब तब करता है जब उसका चिंतन किया जाए। तो चिंतन ब्राह्मण जीवन में, हमारे साधक जीवन में बहुत जरूरी है, और ये चीज हमें से बहुत कम लोग समझ पाते हैं और बहुत कम लोग करते हैं। आज हम ज्ञान का चिंतन करेंगे। हम आपको एक विषय देंगे, उस विषय पर आप दो दो तीन तीन का ग्रुप बना करके चिंतन करेंगे और आप देखेंगे कि आत्मा के अंदर ज्ञान तो है। हम सब बाबा के बच्चे नियमित मुरली सुनते हैं, ज्ञान का अध्ययन भी करते हैं, तो ज्ञान तो हमारे अंदर है, परंतु वो समय पर निकले और ज्ञान एक क्रम में व्यवस्थित हो जाए। ज्ञान सुनना अलग है, और ज्ञान को यदि सुनाना हो दूसरों को तो वो अलग है। ज्ञान को जब हम सुनाते हैं तो उसको यदि क्रमबद्ध रूप से, ऑर्गेनाइज्ड वे में यदि किसी को हम न सुना पाए तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं से कुछ भी सुना दिया, लिंक न जुड़ पाए तो वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। और हमारी सेवा में वाचा सेवा भी महत्व की सेवा है, इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हमें अपने बोल द्वारा भी सेवा करनी है, तो अगर बोल द्वारा सेवा करनी है, ज्ञान सुनाने की सेवा करनी है, तो चिंतन की कला हमारे पास होनी चाहिए। रोज दिन की दिनचर्या में हमको थोड़ा समय निकाल करके किसी शांत एकांत स्थान में बैठ करके हम ज्ञान का चिंतन जरूर करें, उसे लिखें, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरा ज्ञान रिफाइन होता जा रहा है, ज्ञान की समझ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये समझ बढ़ेगी हमारा जीवन सरल बनता जाएगा। तो आज हम चिंतन करेंगे, बाबा ने राजयोग के स्तंभ बताए हैं। कितने स्तंभ हैं राजयोग के? चार। पहला कौन सा है? ज्ञान स्तंभ है। राजयोग के चार स्तंभ, चार विषय नहीं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा शुद्ध अन्न, तीसरा सत्संग, चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो राजयोगी जीवन के ये चार पिलर्स हैं। यदि ये पिलर्स मजबूत नहीं है तो हमारा योगी जीवन स्थिर नहीं बन पाएगा। पिलर का काम क्या है? ये इतना बड़ा हॉल है ना, जिसमें 2500 लोग बैठते हैं, ये पिलर के ऊपर बना हुआ है। पिलर का काम क्या है? उसको स्टेबल बना करके रखना, स्ट्रक्चर को स्टेबल बना के रखना, हमारे साधक जीवन को सस्टेन करता है, उसकी स्थिरता को बना करके रखता है ये पिलर्स, ये जो चार पिलर्स हैं। अब यदि इन चार पिलर्स पर हमें किसी को ज्ञान सुनाना हो, हम लोग सहज रीति सुन तो लेते हैं, शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य की पालना, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, ये चार हमारे पिलर्स हैं। परंतु ये पिलर्स हैं कैसे? क्या रोल है इनके हमारे जीवन में? कैसे ये हमारे योगी जीवन को सस्टेन करते हैं? कैसे ये हमारे योगी जीवन को मजबूती प्रदान करते हैं? क्या रोल है इनका हमारे साधना में? इस पर चिंतन करना है। समझ में आया? डायरी पेन है आपके पास? तो आप सब दो दो तीन तीन का जहां बैठे हैं वहीं ग्रुप बना लें और इन चारों पर आप चिंतन करें, ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन में एक दूसरे की बहुत सारी नई बातें निकल करके आती हैं जो हमें नहीं पता है। तो चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हो, आप एक एक पर शुद्ध अन्न का हमारे जीवन पर, साधना के पर क्या प्रभाव है, ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव है और कैसे, उसी तरह से सत्संग का क्या रोल है हमारे जीवन में, अगर हम सत्संग नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसी तरह से दैवी गुण। तो ये चार एक टॉपिक पिलर्स, उसके ऊपर ये चार इसके सब टॉपिक, चारों पर आपको चिंतन करना है। तो आप सब ग्रुप बना करके चिंतन करें और आपके पास 20 मिनट का समय है। अभी 11:40-42 हो रहा है, आप 12:10 पर पूरा करेंगे इसको। तो आपके पास जो समय है 5 पे इसको पूरा करेंगे और आप में से 2-3 लोगों से अनुभव भी सुनेंगे। आप में से 2-3 लोगों को यहाँ सामने स्टेज पर बुलाएंगे, आपने क्या चिंतन किया, क्या उसका सार लिखा, 2-2 में आप लोग संक्षेप में यहाँ पर सुनाएंगे। तो अभी शुरू करें। डायरी पेन जिसके पास ना हो आप एक दूसरे से शेयर कर लीजिए। अभी आप लोग चिंतन अपना प्रारंभ कर सकते हैं, 12:05 तक आपके पास समय है। ओम शांति। बहुत धीमी आवाज में आप लोग डिस्कशन करेंगे ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। बहुत स्वीट वॉइस में, धीमी आवाज में, 2-2, 3-3 का, 4-4 का ग्रुप बना लें और एक को ग्रुप लीडर नियुक्त कर लें जो नोट तैयार करे, जो भी आप चिंतन करें उसकी समरी वो तैयार करे। 2 में आपसे हम 2-3 लोगों से सुनेंगे। क्या पूछ रहे हैं? क्या लिखना है? डेफिनेशन नहीं लिखनी है, इसकी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे ये हमारे साधना में हमको सहायता देता है, इसके न होने से क्या नुकसान होता है, इसके होने से क्या फायदा है, इस पर, इसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें। अन्न शुद्ध है तो क्या फायदा, नहीं है तो क्या नुकसान। हो गया, और समय चाहिए। ओके, कुछ ज्ञान की बातें बाहर आ रही हैं, कुछ बातें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अंदर भरा हुआ है। अगर ऐसे हम चिंतन करें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बाहर आ सकती हैं, ऐसा लग रहा है। तो कंप्लीट हो गया तो हाथ खड़ा करें, और समय चाहिए, बहुत कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, और समय चाहिए। ठीक है, आप करते रहें, हम आप में से कुछ लोगों का जो सार निकला है वो सुनना चाहेंगे, पर आप सब सिर्फ 2 मिनट में संक्षेप में ही सार सुनाएंगे। कौन आएगा पहले? मैं चाहूंगा कि 1-2 टीचर्स बहनें भी अगर आएं तो अच्छा होगा, बाकी आ जाएं, जिसको भी आना है सामने आ जाएं। सामने माइक है क्या? हाँ, माइक सामने रखा हुआ है, नीचे माइक रखा हुआ है।
भाई जी ने हमें राजयोग के 4 स्तंभ के बारे में बताया है। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जैसे कि बाबा ने राजयोग में बोलते हैं कि आत्मा का निराकार से मिलन, और सब में प्योरिटीज बताई गई है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का यदि हम पालन नहीं करते तो इम्प्योरिटीज है, तो बाबा से मिलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम देहभान में आ जाते हैं। जैसे कि देवी देवता जब नीचे आए तो वामन में आए, अब हमारी चढ़ती कला है, और चढ़ती कला में जाने के लिए हमें प्योर रहना पड़ेगा, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, और इसमें जैसे कि एक दूसरा है शुद्ध अन्न। तो जैसा अन्न खाते हैं वैसा होता है मन, ऐसा बोला ही जाता है। और मन को जैसे कहते हैं मन मनाभव, मन को बाबा में लगा दो, प्यारे पिता में लगा दो, तो जब हमारा अन्न ही अशुद्ध होगा तो मन मनाभव मंत्र काम नहीं करेगा। जो शुद्ध अन्न का मतलब होता है शुद्ध वाइब्रेशन के साथ बनाया हुआ, बाबा की याद में बनाया हुआ, शुभ भावना और शुभकामना के साथ बनाया हुआ, तो अन्न का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, योग में भी पड़ता है, इसलिए ब्रह्मा भोजन सबसे उच्च बताया गया। तीसरा सत्संग। संग हम अभी तक लौकिक में एक दूसरे का करते आए हैं, अलौकिक भी करते आए हैं, लेकिन हमें एक बाबा का ही संग करना है। कहते हैं ना, तुझी संग खाऊं, तुझी संग बैठूं, तुझी से अपना हाल सुनाऊं, उसका संग निराला है। और संग धोखे दे सकते हैं, निंदा स्तुति हो सकती है, लेकिन उनका जो प्यार है एकदम से हम उसका लूटते हैं प्यार, तो उनका ही संग रखना है हमें। और संग झूठे हो सकते हैं, एक वही सच है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। चौथा है दैवी गुण। बाबा बताते हैं कि योग में योग करने से विक्रम विनाश होते हैं, विक्रम विनाश करने हैं, क्योंकि पात्र जो हमारा किचरा से भरा हुआ है उसको पावन करने के लिए वो खाली करना है। लेकिन साथ में बाबा ने हमें बोला है, लक्ष्य दिया है कि हमें देवी देवता बनना है, तो उसके लिए हमें दैवी गुण धारण जरूर करना है, और बाबा ने हमें 7 गुण और शक्तियां बताई हैं, उन्हें हमें धारण करना। ओम शांति।
बहुत बढ़िया। अभी ऐसा करें, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति यदि 4 टॉपिक पे बोलेगा तो ज्यादा समय लगेगा, आप किसी 2 पर बोलिए। जिनको लगता है कि आपने किसी 2 पर अच्छा निकाला है तो 2 पर बोलिए, बाकी फिर नेक्स्ट अगले 2 पर बोलेंगे।
ओम शांति। सबसे पहले जो बाबा ने बताया है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है पवित्रता, लेकिन तन की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा तन पवित्र है और विचार पवित्र नहीं है तो उसका कोई हमारे संस्कारों पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तन के साथ साथ मन को भी पवित्र करना है, विचारों को भी पवित्र करना है। दूसरा है खान पान शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि पहले भी दीदी ने बताया, खान पान शुद्ध होगा तो जल्दी ही हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा की याद में खाओ, बाबा की याद में बनाओ, तो हर समय बाबा को संग रखो। ओम शांति।
यहाँ पर मैं एक चीज माता जी,
लेकिन नीम रखते हैं।
बोलिए बोलिए, मास्क हटा लीजिए, मास्क हटा के बोलिए।
जैसे घर की नीम रखते हैं वो मजबूत होती है, तो वैसे हम अपने को मजबूत करेंगे ताकि औरों को भी मजबूत कर सके हैं, औरों को भी ज्ञान दे सके हैं। और जिस भावना में हम अपना अन्न बनावेंगे, बोवेंगे या भोजन बनावेंगे धर्मा भोजन, उसी में खाकर सब पवित्र होंगे, तो ये मन बदलेगा सबका। ओम शांति।
बहुत अच्छे।
ओम शांति। आज बाबा ने जो हमें बताया कि बाबा की याद से बनाया हुआ भोजन, जब हम खुद बाबा की याद में बाबा के लिए भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा याद आना चाहिए कि ये भोजन हम अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए बना रहे। तो जब वो भोजन शुद्ध और पवित्र बनता है तो जो भोजन बनाया जाता है उस भोजन में खाने वाले की भी स्थिति अच्छी होती है और जो भोजन उसे स्वीकार करते हैं तो वो आत्माएं जो होती हैं उनकी जो दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं होती है तो वो बाबा के भोजन से उन आत्माओं की भी दृष्टि वृत्ति बहुत अच्छी हो जाती है और उनके जीवन में कुछ उन्हें महसूस होता है कि मेरा जीवन इससे परिवर्तन होता है। और बाबा कहते हैं ज्ञान से, जब हम लोग बाबा के ज्ञान में नहीं चलते थे, अंधकार में थे, जब बाबा का हमें रूहानी ज्ञान मिला तो हमारे जीवन में एक प्रकाश एक रोशनी आई जिससे हमने अपने जीवन को परिवर्तन करना सीखा। जैसे बाबा कहते हैं कि पवित्रता हमारी तीन प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से जब हम पवित्र रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव भी आता है और दूसरे पे हमारे जीवन का प्रभाव भी पड़ता है। ओम शांति।
भाई लोग एकदम शांति से बैठे, अभी आगे आ जाएं, कोई सुनना चाहता है तो आगे के सोफा पे आ जाएं।
ओम शांति। जैसे कि हमें सबको पता है कि ज्ञान चिंतन जो है वो हम साधकों के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पैनल में राजकुमारी बहन थी हमारे साथ, मीनू बहन थी और मुझ आत्मा का नाम शरीर का नाम लता है। हमारे जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो मैं जल्दी से आपको सुना देती हूँ। पिलर्स के बारे में हमें सभी को पता है। है पहला शुद्ध अन्न, सब जानते हैं भगवान की याद में बना हुआ भोजन हृदय पवित्र करता है, लेकिन शुद्ध अन्न का जो भंडारा है जहाँ ये भोजन बनता है उसकी एक विशेषता है कि जहाँ इंसानों का भंडारा हट के भगवान का भंडारा हो जाता है और जिसमें भगवान ही भोजन पकवाते भी हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। ठीक है। और शुद्ध अन्न इसका फायदा क्या है जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, मन की बीमारी को जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते वो कमाल ये शुद्ध अन्न कर दिखाता है, मन को तृप्त करता है, आत्मा को तृप्त करता है, इतना तृप्त करता है कि थोड़ा सा खाने से ही एकदम भूख जैसे जन्मों की भूख मिट जाती है, इतना खुश हो जाते हैं। और आज के परिवेश में ये शुद्ध अन्न एक ऐसा टूल है, ऐसा हथियार है जो घरों के कलह कलेश को मिटाए सुकून की तरफ ले जाता है। भाई साहब और भी सुना दूं या रहने दूं?
और एक पॉइंट और सुना
दूं। ओके। सत्संग, सत्संग हमें सत्य की नॉलेज देने की ताकत रखता है। जो सबसे सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम है और जो उसके बच्चे हंस हैं उनका संग कराता है, उनसे हमारा जोड़ कराता है, जिससे हमें सरलता से जीवन, क्योंकि आज ये ही नहीं है, सरलता से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से हम सीख लेते हैं, जीवन हमारा भी एक एग्जाम्पल हो जाता है और दूसरे को भी हम प्रेरित करते हैं जीने के लिए। सत्संग से हमारी आसुरी अवगुण निकालने की हिम्मत जो आज दुनिया में नहीं है वो मिलती है और हमारा जीवन इतना खूबसूरत हो जाता है कि दैवी गुण धारण करते करते गार्डन ऑफ अल्लाह बन जाता है। ठीक है।
भाई आ जाए। कैसे ताली बजाने के लिए बताया गया था, ताली कैसे, हाँ कई लोग बीच बीच में भूल जाते हैं, दो हाथ की ताली बजाने लगते हैं। सुनाए।
ओम शांति। ब्रह्मचर्य पर और भोजन के बारे में बहनों ने बड़े विस्तार से बताया है, लेकिन हमारे ग्रुप में दैवी गुण की धारणा और सत्संग ये अनुभव बताए हैं अपने। दैवी गुण बहुत सारे होते हैं, निर्मलता, सहजता, दृढ़ता, अनुशासन, सरलता, शीतलता। एक भाई जी ने बताया कि जो शालीनता से, उनका अपना एक बड़ा बिजनेस है, अच्छा है, कि जो शालीनता से हम काम करा लेते हैं वो क्रोध में भी करा लेते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया होती है और अगली बार फिर उससे ज्यादा क्रोध करेंगे तब होगा, उससे ज्यादा वो एक सीमा नहीं। लेकिन अगर किसी से हम प्रेम से या सरलता से काम कराएं, तो ये उनका अपना अनुभव है कि वो ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है इसमें। तो ये दैवी गुण अगर हम धारण करेंगे तो इनसे हमारी वृत्ति और दृष्टि दोनों बदलती हैं, और इससे सामने वाले पर भी आदेश देके काम कराना और सरलता से कार्य कराना, ये उसमें दैवी गुणों में आया है। सत्संग, ये मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ कि ज्ञान में आने से पहले दूसरे सत्संगों में भी जाते थे, भागवत भी, रामायण भी, महाभारत भी, गीता भी पढ़ी है, लेकिन कुछ न कुछ प्रश्न दिमाग में रहते थे। कभी स्वर्ग की बात है, लोकों की बात है, आयु की बात है, उसकी लंबी चौड़ी स्टेज की बात है, लेकिन जब से यहाँ ज्ञान में आए हैं तब से इनका आत्मा का भी ज्ञान हुआ, परमात्मा का भी ज्ञान हुआ, ड्रामा का भी ज्ञान हुआ, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान हुआ, चारों युगों का ज्ञान हुआ। लेकिन यही सत्संग है, जहाँ सत्य का संग हो, सत्य का, एक भाई जी ने बताया कि जहाँ सत्य का संग होगा वही सत्संग है, तो वो सत्संग यहाँ है। भोजन के बारे में मैं थोड़ा सा, ये दो तरह से होता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन को हम अशुद्ध मानते रहे, मानते हैं, लेकिन वेजिटेरियन को हम शुद्ध मानते रहे। ये स्पष्ट बात यही ज्ञान में आके पता चली कि वेजिटेरियन भोजन भी शुद्ध कैसे होगा। ये देखिए, उसको बनाने वाला, उसको लाने वाला, परोसने वाला, किस भावना से उसने बनाया, ये उसका सब चीजों का प्रभाव उसके अन्न पर, और जब अन्न का प्रभाव आएगा तो मनुष्य का उसकी वृत्ति भी बदल जाएगी, उसकी दृष्टि चेंज हो जाएगी, उसका भाव बदल जाएगा। अन्न का इतना गहरा प्रभाव जो है हमारे मन मस्तिष्क पर, मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा, शरीर का, भाई शरीर की शुद्धता तो इसमें है ही, लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य भी यही है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्मा की तरह आचरण करना। अब आप उसको बहुत बार आता है कि फॉलो बाबा का नहीं फॉलो, तो अब ब्रह्मचर्य किस स्थिति में बाबा ब्रह्मा ने अपना आचरण किया वो भी है। शुद्ध शारीरिक शुद्धता तो दुनिया में भी बहुत लोग रखते हैं, बहुत साधु संत महात्मा बहुत रखते हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्मा बाबा की तरह आचरण करना। ओम शांति।
बहुत अच्छा, काफी डीप में आपने चिंतन किया, बहुत बढ़िया। अभी बस दो लोग और, आप एक भाई एक बहन, बस दो और सुना दें।
मैं भोजन के बारे में बताऊंगी कि जैसे अभी कोरोना का टाइम था, मैं अपना अनुभव ही हम बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से जॉब करती थी, मैं यूएन में जॉब करती हूँ, बाबा के ज्ञान में 10 साल से चलती हूँ, बट कभी भी अपने आप भोजन नहीं बनाती थी, मतलब ज्यादातर मेड बनाती थी घर में, और बच्चों के लिए भी वही बनाती थी और ये सब था। पर बाबा ने ऐसा वो करा कि कोरोना में मतलब मैं घर पे रही, 2 साल से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और जब खाना घर पे बनाया, आप मानेंगे मेरे बच्चों में इतना चेंज है, इतना चेंज है कि मतलब जमीन आसमान का चेंज है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये इतना बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे बोलते हैं कि ये रहा कि मतलब वो 360 डिग्री चेंज जो है वो बाबा की याद में खाना बनाने से चेंज आया। और मतलब वो ज्ञान की बात तो खैर बिल्कुल ही नहीं सुनते थे, उन्होंने 7 डेज का कोर्स करा, और अभी जैसे मैं उनसे बात कर रही थी फोन पे, तो मेरे को मेरी डॉटर ने कहा कि आप मुझे यहाँ पे क्यों नहीं लेके आए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत मतलब ये लाइव वो रहा और टर्निंग पॉइंट रहा। और सत्संग जो मुझे ये भी लगता है कि जैसे बाबा के ज्ञान में आए तो बहुत सारे फ्रेंड्स, और मतलब क्योंकि पले बड़े ही दिल्ली में हैं तो इतना फैलाव था फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे समेटना शुरू करा तो बहुत एकाग्रता आई। और मतलब एकाग्रता से मैंने ये फायदा देखा कि मैंने इस एज में मास्टर्स करी, मैंने एक बहुत बहुत ही मुश्किल कोर्स था वो करा, जो कि बहुत यंग एज में मेरे लिए करना मुश्किल था। तो ये सारी चीजें जैसे व्यर्थ जो है ना, वो जब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आप समेटना शुरू करते हो तो आपके बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। थैंक यू।
ओम शांति। शुद्ध अन्न, अन्न का खाना बनाने और खाने से ही मतलब नहीं है, अन्न कैसे पैसे से कमाया गया किस विधि से कमाया गया भाई जी, उसकी शुद्धता वहां निर्भर करती है। मैं चोरी करके लाया, बेईमानी करके लाया, वो बच्चों को खिलाया, तो उसका असर बच्चों पर, खाने वाले हर, तो कहते ना जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जो जैसे पैसे से कमाया जाएगा वैसे ही उसका असर पड़ेगा। इसके बाद आती है उसके बनाने की विधि, कि वो किस शुद्ध पवित्रता के साथ बनाया गया है, उसमें हमारे संकल्प कैसे डाले गए हैं, वो परिवार को पालने के लिए बनाया गया है या उनका पेट भरने के लिए बनाया गया है। जो बाबा की याद में, जो भी गृहिणी बाबा को भी नहीं भगवान की याद में जो अन्न बनाती है, भोजन बनाती है, तो उसका असर अलग पड़ता है, क्योंकि उसके संकल्प उसमें नेत रहते हैं। दूसरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब बाहर की दुनिया में तन मन, तन से मन से और दृष्टि वृत्ति से है। बाबा ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के जो आचरण पर चलेंगे उसमें यही बात है कि जो जो आचरण ब्रह्मा बाबा के थे, अगर तन से मन से दृष्टि से वृत्ति से हम उनका नियम पूरा पालन करेंगे तो पूर्ण ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य कहलाएंगे। ओम शांति
जी। लास्ट भाई एक दो मिनट में आप ही फटाफट सुना लें। ओम शांति हो रहा है।
काफी कुछ बोला है राजयोग के बारे में, मैं सिर्फ एक पॉइंट ही बोलता हूँ भाई जी, तो चारों लिखे हैं। राजयोग का जैसे पिलर के बारे में बात हो रही है, पिलर का मीन्स यह है कि जब हम अपनी योग लगाते हैं तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो उस स्थिति पर या उस सीट पर टिक जाए, हमें विचलित ना करे। इसीलिए ये पिलर्स है, पिलर्स का मीन्स जो हिलाए ना, हम टिके रहे उसके ऊपर। तो ये चारों के बारे में भाई ने बहुत अच्छा बोला, तो मैं सिर्फ देवी गुणों के बारे में थोड़ा बोलता हूँ। जैसे देवी गुण हमारे हैं, जो मैं आत्मा हूँ, जब मैं इस स्वरूप में आता हूँ तो मेरे को मालूम है मैं किस स्वरूप में हूँ, शांति प्रेम पवित्रता, ये मेरा ओरिजिनल, मेरा ओरिजिन है, मैं बेसिकली यही हूँ, सुख शांति परमात्मा से जो मेरे को मिला है, और ये मुझे मिला है मेरे परमात्मा से, तो इससे मुझे कनेक्शन करना है। जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है तो उसे ही राजयोग कहते हैं, और ये बड़े सहजता से लेना चाहिए। तो यह सहजता से देवी गुण के बारे में बता रहा हूँ। देवी गुण मीन्स ये सब शक्तियां तो मेरे पास है, यही देव परमात्मा की भी है जो मेरे में इमर्ज मुझे की। इसके अलावा जब मैं जब विजुलाइज हम जब करते हैं देवी गुण जब धारण करते हैं, तो मेरे में जो शक्तियां आती हैं, शक्तियां जैसे टॉलरेंस की हो गई, विड्रॉल की हो गई, अकोमोडेशन की हो गई, पावर मेरे को फेस की, फेसिंग की पावर हो गई, या मेरे को किसी भी स्थिति के अंदर पावर टू पैक पावर, ये जो हमारे को आठ शक्तियां मिलती हैं, ये शक्ति जब मेरे अंदर इमर्ज होती है तो मैं परमात्मा के अंदर बिल्कुल अंदर, हम सब यानी कि जब ये जब आती है हमारे अंदर, तो हम लगने लगता है कि हम उसके अंदर उसका स्वरूप बनते आ रहे हैं, धीरे धीरे स्वरूप बनते आ रहे हैं, और फिर वो हमारे कर्मों में भी दिखने लगता है। जैसे कि हम कभी राजयोग से यही आता है कि जब हम अपना आचरण जब आएगा तो हमारे लिए सबके लिए प्रेम आना चाहिए, सबके लिए जैसे दाता मास्टर वरदाता बनना है तो उसके लिए तभी होगा जब मेरा हृदय बड़ा निर्मल होगा और मेरा ज्ञान इतना उस लेवल पे होगा कि मैं परमात्मा को हमेशा याद रखूं। जैसे कि सत्संग था, सत मतलब परमात्मा, परमात्मा के जब संग करेंगे तो हमेशा हमें अच्छा ही होगा। और वो कैसे करेंगे, उसका तो याद है या फिर मुरली है, मुरली सुनेंगे तो परमात्मा का साथ हमेशा रहेगा, ज्ञान भी मिलेगा और हमारा दिन काफी, लिखा तो काफी कुछ है भाई लेकिन समय कम है।
ठीक है,
ओम शांति भाई,
बैठ जाए, बस समय हो गया है। आप सबने अच्छा चिंतन किया है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो चारों ही विषय हैं अपने आप में बहुत गहरे और बड़े विषय हैं। अभी भी इस पर बहुत कुछ गहराई से सोचा जा सकता है। हमारे ये एक्टिविटी कराने का लक्ष्य ये है कि आप इसको अपनी हैबिट में लाएं, इसको अपनी आदत बनाएं, अपनी दिनचर्या का एक अंग बनाएं। थोड़ा समय प्रतिदिन निकाल करके आप किसी शांत एकांत स्थान में ना मिले तो अमृत वेला, सब सोए रहते हैं, आपके लिए बहुत शांत समय होता है। घर के किसी साफ स्वच्छ स्थान पर बैठ करके आप डायरी पेन लेकर के अपने चिंतन को लिखें। एक ही विषय लेकिन हर कोई उस पर कुछ न कुछ नया बोल रहा है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए यदि हम भोजन की बात लेते हैं, तो जैसे एक भाई ने बहुत अच्छी बात कहा कि शाकाहारी भोजन, केवल शाकाहारी भोजन शुद्ध अन्न नहीं है। हमारे लिए नियम क्या है, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन नॉट ओनली शाकाहारी, लेकिन वो परमात्मा की याद में बनाया गया हो, एक अच्छी वाइब्रेशन में, एक अच्छी वृत्ति में स्थित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, क्रोध मुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर, ऐसे मनोस्थिति में बनाया गया भोजन। अब ये भी केवल अच्छी मानसिकता में बना हुआ भोजन भी केवल शुद्ध अन्न नहीं है, उस भोजन को फिर परमात्मा को अर्पित किया गया हो। अब बात सिर्फ यहां ही पूरी नहीं होती है, ये भी कंप्लीट शुद्ध आहार नहीं है। जब भगवान को अर्पित कर दिया तो वो भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। लेकिन प्रसाद भी यदि अनुचित मनोदशा में खाया जाए, तनाव की स्थिति में खाया जाए, बहुत जल्दबाजी में खाया जाए, अगर मैं बहुत अच्छी अवस्था में स्थित होकर के अन्न को ग्रहण नहीं कर रहा हूं, शांत बाबा की याद में बहुत प्रफुल्लित होकर के, उसे बाबा का प्रसाद समझ करके, भगवान का दिया हुआ ये अन्न, भगवान का प्रसाद, कितनी मेहरबानी है जो भगवान ऐसे समय में, कोरोना काल में जब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, हमें भरपेट भोजन दे रहा है। एक अच्छी मन स्थिति में स्थित होकर के खाना, ये कुल मिला करके क्या बनता है? शुद्ध आहार। अब शुद्ध आहार में मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि हमको कैसे गहराई में जाना है। अभी तक जो आपने चिंतन किया वो बहुत अच्छा था, पर और हमको इसके डिटेल और गहराई में जाने की जरूरत है। हम जितनी गहराई में जाएंगे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारी समझ बढ़ेगी, हमारी धारणा बढ़ेगी, और फिर हम दूसरों को भी वैसा ही समझा पाएंगे। अब शुद्ध आहार में बात यही पूरी नहीं होती है, इसके अलावा आचार बहुत सरल, कई लोग बहुत आचार खाते हैं ना, बहुत तीखा खाते हैं, बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, एक योगी के लिए ये भी क्या है? ये शुद्ध अन्न नहीं है। आचार कौन सा भोजन है? सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, कैसा भोजन है? हमारे लिए क्या नियम है? राजसिक भोजन खाने का नियम है, हमारे लिए सात्विक भोजन का। बहुत ज्यादा अचार खाना, जानकी दादी अचार बिल्कुल नहीं खाती थी, तो बहुत ज्यादा तीखी चटपटी चीजों का प्रयोग करना ये भी हमारे आहार नियम के विपरीत है। बहुत ज्यादा चाय पीना, बहुत स्ट्रांग चाय कॉफी पीना, ये सब हमारे योग को प्रभावित करते हैं। भोजन आवश्यकता से अधिक करना, आहार आपका शुद्ध है, बहुत अच्छी मानसिकता में बना है, बाबा को भोग लगा है, लेकिन रसगुल्ले बने हैं, समोसे बने हैं, दो खाने चाहिए थे, आपने चार खा लिए, क्या होगा? योग लगेगा? पेट की कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा खा लिया, फिर क्या? नींद आएगी, शरीर में स्थूलता बनी रहेगी, ब्रेन की पूरी एनर्जी उसको पचाने में चली जाएगी, हमारा मन ऊपर नहीं जा पाएगा। योग लगाने के लिए ब्रेन का सहयोग बहुत जरूरी है, मन ब्रेन के थ्रू मेडिटेट करता है, तो इसकी बहुत गहराई है। आप सब यहां से जब जाएंगे, भोजन करके कमरे में विश्राम करने जाएंगे, आप एक घंटा विश्राम कर लेना, आपके पास 4:30 बजे तक का समय है, 4:30 बजे से 5 मिनट पहले यहां आना है, तो आपके पास काफी समय है ना, 1 से 4, 3 घंटा, आधे घंटे में भोजन करके 1 घंटा विश्राम करना, फिर भी आपके पास 1.5 घंटा बचता है ना, आप इस पर बैठ करके लिखना, अपने बिस्तर पर बैठकर डायरी पेन करके लेके लिखना, एक एक ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा विषय है। सत्संग, केवल परमात्मा का संग सत्संग नहीं है, मुरली सुनना, ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान की किताबों का, अच्छे लोग यानी बाबा के जो बच्चे हैं ना या परिवार है उनके संग में रहना, ये सत्य बाप के सत्य बच्चे हैं ना, इनका संग ये भी सत्संग है। सत्संग अकेले नहीं होता है, ये सत्संग हो रहा है ना अभी, कितने लोग बैठे हैं यहां पे, तो हर एक विषय की गहराई है चिंतन से। बाबा इसीलिए कहते हैं कि चिंतन से आत्मा की चमक बढ़ती है, समझ बढ़ती है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप जब तक भी यहां हैं आप इसको करके देखिए और घर में भी कंटिन्यू करें। तो आज आप लोग इस पर ये जो चारों विषय हैं उस पर लिखना, आपको लगेगा कि सचमुच बहुत कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब ये चीजें आपके दिमाग में होंगी तो ही आप इस पर पुरुषार्थ कर पाएंगे, चीजें भूली हुई होंगी आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे ऐसा, तो अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं,